Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesham Rajata Girinibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः 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 शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ
हराय नमः ॐ
हराय नमः ॐ नमो हराय बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ नमो भवाय बाबाय नमः ॐ बाबाय बाबाय नमः ॐ नमो भवाय बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ नमो भवाय बाबाय नमः ॐ
बाबाय नमः
भवाय नमः ॐ नमो भवाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ
शिवाय नमः ॐ
शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् भज मन शिव शिव
निरन्तरम्
जप मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम ओम ओम। कृष्ण यजुर्वेदीय मंत्रोपनिषद के अंतर्गत श्वेताश्वतर उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में 16वां मंत्र है। घृतात् परम मंडमिवाति सूक्ष्मम्
धृतात् परम मंडमिवाति सूक्ष्मम्
ज्ञात्वा शिवम् सर्वभूतेषु गूढम्
ज्ञात्वा शिवम् सर्वभूतेषु गूढम्
विश्वसैकम् परिवेष्टितारम्
विश्वसैकम् परिवेष्टितारम्
ज्ञात्वा देवम् मुच्यते सर्वपाशैः
ज्ञात्वा देवम् मुच्यते सर्वपाशैः
एष देवो विश्वकर्मा महात्मा
एष देवो विश्वकर्मा महात्मा
सदा जनानाम् हृदये सन्निविष्टः
सदा जनानाम् हृदये सन्निविष्टः
हृदा मनीषा मनसा विक्लृप्तो
मनीषा मनसा विक्लृप्तो
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति
यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रि
यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रि
न सन्न च सच्छिव एव केवलः
न सन्न च सच्छिव एव केवलः
एतच्छरम् तदक्षरम् तत्सवितुर्वरेण्यम्
तदक्षरम् तत्सवितुर्वरेण्यम्
प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी
प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी
नैनमूर्धम् न तिर्यम् च
नैनमूर्ध्यम् च नैनम् च
न मध्ये परिजग्रभ
न मध्ये न परिजग्रभ
न तस्य प्रतिमा अस्ति
न तस्य प्रतिमा अस्ति
यस्य नाम महद्यशः
यस्य नाम महद्यशः।
तो तत्पद का शोधन हो रहा है। तत्पद का जो तटस्थ लक्षण वाला परमात्मा है उसका प्रतिपादन किया गया था, उसी को यहां एक रूपक के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं श्रुति। उपनिषद की यह दृष्टि रही है कि जो व्यवहार से परे है, परमार्थ है, उस तत्व को व्यवहार के लेवल से, व्यवहार के माध्यम से समझाया जाता है। कई बार जब हम कहते हैं कि परमात्मा, उस परमात्मा का इस लौकिक व्यवहार से कोई संबंध नहीं है, वो पारमार्थिक सत्य है और व्यवहार केवल व्यावहारिक सत्य है, वो पारमार्थिक सत्य है, तो ये जगत क्या है, तो बोलते हैं मिथ्या है। तो मिथ्या जगत है तो इस मिथ्या जगत की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए बताया जाता है कि सत्य वस्तु को समझने के लिए मिथ्या जगत की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वह सत्य ऐसा सत्य है कि वह सीधा सीधा सत्य सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, समझा नहीं जा सकता, समझाने वाला समझा नहीं पाएगा, समझने वाला समझ नहीं पाएगा। तब ये आचार्यों की परंपरा रही है कि समझने वाले ने जो समझा है उसी के माध्यम से समझाने वाला समझाता है तो समझने वाला समझ पाता है। समझाने वाला, समझने वाला, उसने क्या समझा है? तो घी उसने समझी है। आप लोगों ने घी समझा है कि नहीं? घी तो समझा ही है। रस खाना हो आम का रस तो उसमें घी चाहिए, भात खाना हो तो उसमें घी चाहिए, रोटी खानी हो तो घी चाहिए, घी तो आप समझ ही रहे हैं। घी को गुजराती से भी ज्यादा मारवाड़ी लोग समझते हैं। हरियाणा और राजस्थान में जाओ तो वहां घी का ही खेल है। और हम जब बीकानेर गए थे, क्योंकि बीकानेर के साथ अपने आश्रम का बहुत आत्मीयत संबंध है, तो बीकानेर गए तो वहां सभी लोग घी का साम्राज्य, सभी घी खाने के लिए कहते हैं और हम कहते हैं घी नहीं खाएंगे। तो वो कहते हैं महाराज राजस्थान में आकर घी नहीं खाएंगे तो राजस्थान आना ही बेकार है। हमने कहा ऐसी क्या बात है राजस्थान की? वो लोग कहते हैं यहां का जो हवा है उस हवा में इतनी ड्राई पना है, सूखा पना है, यदि आप घी नहीं खाओगे तो यहां जीना मुश्किल हो जाएगा, और जब घी खाते हो एकदम तर होता है शरीर, तो बाहर की सूखी हवा आपको क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर पाएगी। नहीं तो आपके शरीर की जो स्निग्धता है वो सब को ये सूखा कर देगा, ऐसा खींच लेगा। तो चूरमा बाटी, सांगरी का सब्जी, घी डालकर चूरमा बाटी खाओ तो जबरदस्ती खिलाते हैं घी। वह अब ये हवा पानी का भी असर करता है, कहीं कहीं वो घी पच भी जाता है, कहीं वही घी पचता नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि श्रुति, उपनिषद, आचार्य, गुरु वर्ग, इन लोगों का प्रयत्न ये रहा, कोशिश ये रहा है कि जो व्यवहार में आप जिस चीज को समझ रहे हैं उसी के माध्यम से वो परमात्मा को समझाया जाए। दृष्टांत समझे हुए वस्तु का होता है, जाने पहचाने वस्तुओं का ही दृष्टांत दी जाती है। जिसको आप जानते ही नहीं, जिसको आप पहचानते ही नहीं, जिससे हम वाकिफ नहीं है, उसके दृष्टांत देकर दृष्टांत क्या समझ में आएगा? दृष्टांत वैसे भी नहीं, उससे हम वैसे भी परिचित नहीं है, और उसको समझाने के लिए जो दृष्टांत दे रहे वो भी परिचित नहीं है, तो दृष्टांत नहीं समझ में आएगा। तब फिर आप जिस वस्तु से परिचित हैं उसके माध्यम से समझाया जाता है। श्रुति यहां सबसे पहले दृष्टांत दे रही है। घृतात् परम मंडमिवाति सूक्ष्मम, वो परमात्मा तत्व कैसा है, इस स्वरूप लक्षण का ही वर्णन है एक प्रकार से। क्योंकि हम कहते आ रहे हैं परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक स्वरूप लक्षण, दूसरा तटस्थ लक्षण। कहीं कहीं तटस्थ लक्षण के माध्यम से समझा रहे हैं तो कहीं कहीं स्वरूपतः समझा रहे हैं। ये जो दृष्टांत है स्वरूप लक्षण का ही दृष्टांत है। शंकराचार्य जी को भी घी अच्छा लगता होगा, जिसको जो अच्छा लगता है वही दृष्टांत देगा। घृतात् परम मंडमिवाति सूक्ष्मम्। एक तो होता है घी और दूसरा होता है घी का मंड। अब ये मंड क्या है महाराज? दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे थे तो रुंड मुंड आता है वहां, है चंड मुंड रुंड मुंड ये शब्द आता है। तो रुंड क्या है और मुंड क्या है? बोले गर्दन से ऊपर का नाम मुंड और गर्दन से नीचे का नाम रुंड। इसी तरह गर्दन से नीचे का नाम चंड और गर्दन के ऊपर के नाम मुंड, चंड मुंड। ये तो तब होगा, एक ही व्यक्ति इस दूर दो रूप में तब व्यक्त होंगे जब उनका गर्दन कटेगा, तब जाके वो चंड और मुंड होगा। और जब तक गर्दन नहीं कटेगा, तलवार का प्रयोग नहीं होगा, तब तक न चंड रहेगा न मुंड रहेगा, जो रहेगा वही रहेगा। एक व्यक्ति कटकर दो होता है तो दो हिस्से का अलग अलग नाम हो गया। गर्दन से नीचे के हिस्से का नाम चंडा और गर्दन से ऊपर के हिस्से का नाम मुंड, तो चंड मुंड दोनों पूरे के पूरे हो गए भाई। अब यहां मंड की बात आ रही है, न चंड की न मुंड की न रुंड की, क्या मंड की बात है। तो मंड क्या है? घृतात् परम मंडम इव, इव पद दृष्टांत के लिए, जैसे अति सूक्ष्म। अब आप लोगों ने घी देखा ही है, घी खाया भी है, मंड देखा है कि नहीं, मंड खाया है कि नहीं? तो खाया तो है आपको, लेकिन यही मंड है, इसी को मंड कहते हैं। ये बात शब्द से परिचित न होने के कारण आपको लग रहा है कि ये मंड क्या बला है। मंड माने घी की मलाई। किसकी मलाई? दूध की मलाई तो आपने देखा है ना, है दूध की मलाई तो देखा है, घी की मलाई देखा है कि नहीं? ले जी फिर तो क्या घी खाया? घी कुछ भी नहीं है बाबा, जैसे दूध कुछ भी नहीं है दूध की मलाई के सामने। दूध की मलाई के सामने दूध कुछ भी नहीं है, लेकिन आजकल तो दूध तो पीते मलाई नहीं लेते। आज के नए नए बच्चों को कहो, हम लोग मलाई के लिए लड़ते थे, हम लोग को तो सबसे पहले मलाई चाहिए। हमारे जमाने में तो मलाई का महत्व था और आज फिर मलाई का कोई महत्व ही नहीं है। दुनिया भर की चीज खाएंगे, मलाई नहीं खाएंगे दूध पीने के समय में। बच्चे पिज्जा खाएंगे और पिज्जा में क्या है भाई? ब्रेड बटर खा लेंगे, बटर खा लेंगे, बटर में क्या है? लेकिन उनको कहो कि मलाई खाओ तो मर गए, तो नहीं खाएंगे मलाई। दूध पीते समय थोड़ा सा मलाई का टुकड़ा आ गया, निकाल देंगे। पता नहीं क्या परंपरा चल पड़ी है। तो ये है मंड का अर्थ होता है घी की मलाई। अब आप तब समझेंगे कि घी की मलाई क्या है, आपने देखा है अनुभव किया है। जैसे दूध होता है, दूध को जमाया जाता है तो दही होता है, फिर उस दही को अच्छी तरह मथा जाता है तो मक्खन निकलता है। ये मक्खन क्या है? तो बोले दही का सार रूप है, और उस मक्खन को भी जब तपाया जाता है, अच्छी तरह गर्म किया जाता है, तपाया जाता है। गर्म करने का अलग प्रसंग है और तपाने का अलग प्रसंग है। तपाने में वो आता है, उसमें विद्यमान जो घी है, घीपना है, स्निग्धपना है, उसमें कोई दूसरा विकार न रहे। यदि कदाचित मक्खे के मक्खन के माध्यम में, मक्खन में दही और मट्ठा का कोई अंश रह भी गया होगा, तो रहता ही है मक्खन में, तो वो अंश रहता ही है। तब उस अंश को भी उस मक्खन से यानी घी से अलग करने के लिए उसको अच्छी तरह तपाया जाता है। तब वह मट्ठे का जो अंश है वह तो उस बर्तन में नीचे जाकर बैठ जाता है और उस मक्खन में घी का अंश है वह ऊपर हो जाता है पिघलकर, और उस घी को फिर आप तपा कर अच्छी तरह तपा के जब आप बर्तन को रख देते हो तब वह घी ठंडा होने लगता है। जब घी ठंडा होने लगता है तो घी के ऊपर एक पापड़ी जम जाता है, उसी का नाम है घी की मलाई। वह घी से भी अच्छा होता है। तो बचपन में खूब वो घी की पापड़ी, घी की मलाई है। उसी को यहां मंड कहा। और ये मंड शब्द अपभ्रंश होकर ही आप लोगों के लौकिक भाषा में भात का माड़ कहा गया है। अब जिसको माड़ कहते हो ना, भात पकाते हो, चावल चावल को खूब पकाओगे, फिर उस चावल पक जाने के बाद जो पानी का अंश निकाला जाता है, ये तो आपके लौकिक भाषा में उसी को माड़ कहते हैं। अब डॉक्टर लोग कहते हैं कि भात में और माड़ में कौन ज्यादा पौष्टिक है, तो डॉक्टर कहते हैं माड़ ज्यादा पौष्टिक है भात से। तो बीमार लोगों को भात खाओ नहीं कहेंगे वो। यदि आपका पेट बिगड़ गया हो, आपको पाचन क्रिया में कुछ कमजोरी आई हो, तो आपको वीकनेस हो, कमजोर हो, तो थोड़ा सा नमक डाल के, और आप अच्छा टेस्ट लेना चाहते हो तो थोड़ा नमक और थोड़ा सा जीरा भूंज कर उसको पीस कर उसमें डाल दो, एक कटोरी माड़ पी लो। तो एक थाल भात खाने का और एक कटोरी माड़ पीने में माड़ ज्यादा तगड़ा रहता है भाई। इसका मतलब क्या हुआ? भात का सार है माड़। इसी तरह पश्चिम बंगाल में तो एक परंपरा ही है, शाम को खूब भात पका लेंगे और उस भात को पानी में डुबोकर शाम को रख देते हैं। पूरे भात को पानी में डुबोकर रख देंगे और प्रातः काल उसको छान कर भात को सुरक्षित रखेंगे, और जो माड़ जो पानी में डूबा हुआ माड़ है, वो पानी भात में डूबा हुआ वो पानी को फिर वह प्रातः काल पीते हैं, सुबह सुबह पीते हैं। फिर बचा हुआ जो भात है उसी में फिर सब्जी वगैरह मिलाकर दोपहर को खा लेंगे, पानी सुबह पिएंगे खाली पेट में। पश्चिम बंगाल की परंपरा, बीमार लोगों को तो प्राय करके यही खिलाते हैं गांव में, उसको माड़ बोलते हैं। घृतात् परम मंडम इवाति सूक्ष्मम, कहते हैं घी, और घी को जब अच्छी तरह तपाया जाता है और वह ठंडा होने लगता है तब उस घी के ऊपर एक छोटी सी पतली सी पापड़ी जमती है, उसी को यहां मंड कहा। वह घी से सूक्ष्म है, पर है, उत्तम है। यहां पर शब्द का अर्थ सूक्ष्म ले लेना और पर शब्द का अर्थ उत्तम ले लेना। 100 ग्राम घी खाना और 5 ग्राम घी का मंड खाना वो ज्यादा गुणकारी है। घी का मंड माने घी के जो मलाई है ऊपर की पापड़ी। स्वामी अखंडन जी महाराज ने तो कहा है कि वो चीनी से भी मीठा होता है, खा लेना भाई, टेस्ट कर लेना। मीठा होता है का होना अलग है, स्वादिष्ट होना अलग है, और हितकारी होना अलग चीज है। मीठा शब्द का अर्थ होता है हितकारी है। अब हम लोग तो मीठा शब्द का अर्थ जिह्वा को जो अच्छा लगे उसी को मीठा कहते हैं, भले ही वह अहितकारी हो तो भी उसको मीठा ही लेते हैं हम लोग। जैसे कि मधुमेह के रोगी को चीनी और मिश्री अहितकारी है, फिर भी हम उसकी व्याख्या करेंगे तो ये मीठा है। मीठा शब्द का अर्थ मधुरता, मीठा शब्द का अर्थ हितकारी। दूध दही से ज्यादा हितकारी मक्खन है, मक्खन से ज्यादा हितकारी घी है, और घी से भी ज्यादा हितकारी घी का मंड है, घी की मलाइयां। आपकी भाषा में कह दिया जाए तो घी की मलाई। घृतात् परम मंडम इवाति सूक्ष्मम, क्योंकि जब तक वो घी को गर्म करते हो तब गर्म जब तक रहता है वो दिखता नहीं, जब वह अच्छी तरह पककर जब ठंडा होने लगता है तब जाकर वह दिखने लगता है। उसको पूरा का पूरा पकड़ने लगो तो वह पकड़ में आएगा नहीं, वो टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा, हाथ से छू लो बिखर जाएगा वो, चम्मच से ऊपर से निकालोगे तब थोड़ा बहुत आएगा वो। इवा घृतात् परम मंडम इवाति सूक्ष्मम ज्ञात्वा, ये बात तो समझ में आई कि घी के ऊपर भी सूक्ष्म एक मंड होता है, एक परत होती है, और वह बड़ा घी का सार है, ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि लौकिक व्यवहार में देखने में आता है ये घी गर्म करके रखते हैं तो वो एक पापड़ी दिखती है। ज्ञात्वा शिवम सर्वभूतेषु गूढ़म, इसी तरह वह सारे के सारे जगत के नाम रूपात्मक पदार्थ में इन सारे पदार्थों के सहार के रूप में वह शिव तत्व विद्यमान है। जैसे कुछ आयुर्वेदिक औषधि हैं, दवाइयां हैं, कुछ दवाई तो दूध के साथ खाने के लिए कहते हैं डॉक्टर, जैसे च्यवनप्राश हो गया, शिलाजीत हो गया, ऐसे ऐसे कुछ ऐसी दवाइयां हैं कि जिसको वैद्य लोग कहते हैं कि ये तुम नियमित सुबह और शाम दूध के साथ खा लो, दूध के साथ ले लो। लेकिन कुछ ऐसे रसायन होते हैं कि वह दूध के साथ लेने के लिए निषेध करते हैं, वो कहते हैं कि मक्खन के साथ ले लो, और कुछ ऐसे रसायन होते हैं कि वो कहते हैं कि मलाई के साथ ले लो, और कुछ होते हैं घी के साथ लेने का। अरे बाबा, ये सब एक ही सिस्टम है, उसी दूध से मलाई बनता है, तो दूध के साथ ना लेकर मलाई के साथ लेने की बात क्यों करते हो? और उसी दूध से मक्खन बनता है तो फिर दूध से लेने के न कहकर फिर तुम मक्खन से लेने की बात करते हो, और उसी दूध से घी बनता है तो फिर आप घी के साथ ना लेकर मक्खन के साथ ले लो बोलते हो, मक्खन से ना लेकर घी के साथ ले लो बोलते हो, इसका क्या राज है भाई? यही तो उसका रहस्य है। कारण के सहित जो वस्तु है और कारण से अलग हुआ हुआ वस्तु में ये विशेषता है। कारण में जो कार्य विद्यमान है वह कार्य के रूप में तो वह आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाएगा, वह कार्य के रूप में परिणत होते ही उसमें ये विशेषता आ जाता है कि वह अपने कारण धर्म से अलग एक नया प्रभाव दिखाने लगता है।